सोचिए, बिना इंटरनेट, बिना किसी स्मार्टफोन या कह लें बिना किसी मार्केटिंग बजट के किसी विचार को पूरी दुनिया में वायरल होने में कितना वक्त लगेगा। आज के दौर में तो किसी मीम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने में बस कुछ सेकंड लगते हैं।
बिल्कुल, आज तो सब कुछ हमारी उंगलियों पर है।
वही तो, लेकिन हजारों साल पहले मुट्ठी भर लोगों के एक छोटे से समूह ने एक ऐसा संदेश फैलाया जिसने पूरे रोमन साम्राज्य और अंततः पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। मतलब ये कोई जादुई रूप से रातों रात तो हुआ नहीं होगा। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये सब असल में हुआ कैसे।
ये ना इतिहास और समाज शास्त्र के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। हम यहाँ डॉक्टर क्रेग कीनर के शोध पर बात कर रहे हैं, विशेष रूप से एक्ट्स यानी बुक ऑफ एक्ट्स पर उनके छठे लेक्चर के आधार पर।
एकदम सही।
कीनर का काम हमें ये दिखाता है कि शुरुआती ईसाइयत का प्रसार या इवेंजलिज्म कोई एक रटा रकाया फॉर्मूला नहीं था। ये बहुत ही जैविक था, अलग अलग संस्कृतियों के अनुसार ढला हुआ और बेहद सोची समझी रणनीतियों का एक पूरा नेटवर्क था।
ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये भ्रम तोड़ना होगा कि ये काम सिर्फ कुछ बड़े नेताओं का था। मतलब अगर हम आज की किसी भी बड़ी संस्था को देखें तो अक्सर 95% काम केवल 5% लोग करते हैं ना।
हाँ, जैसे कोई मैनेजमेंट या पेशेवर वर्ग।
बिल्कुल, लेकिन कीनर बताते हैं कि शुरुआती ईसाइयों का मॉडल इसके एकदम उलट था। ये संदेश फैलाना किसी खास पादरी वर्ग का एकाधिकार नहीं था।
और देखिए, यहीं से आंदोलन की असली ताकत शुरू होती है। ये कोई संस्थागत काम नहीं था, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर आम विश्वासी जब यात्रा करता था या अपने काम पर जाता था तो वो इस संदेश को अपने साथ ले जाता था। पॉल का ही उदाहरण ले लीजिए।
हाँ, जो टेंट बनाते थे।
बिल्कुल, एक्ट्स के 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो चमड़े का काम करता था। वो समाज से कटकर या किसी ऊंचे आसन पर बैठकर उपदेश नहीं दे रहा था, बल्कि बाजार की धूल और पसीने के बीच आम लोगों के साथ काम करते हुए बातचीत कर रहा था।
ये तो एकदम आज के ग्रासरूट्स या स्टार्टअप नेटवर्किंग जैसा लग रहा है, जहां आप किसी बोर्डरूम में नहीं बल्कि साथ काम करते हुए या लंच ब्रेक के दौरान अपने सबसे बेहतरीन आइडियाज शेयर करते हैं। और इसी संदर्भ में कीनर ने रोमन संस्कृति के उस संरक्षक और आश्रित यानी पैटर्न क्लाइंट नेटवर्क का भी तो जिक्र किया है।
यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोई नई संस्कृति थोपने के बजाय पहले से मौजूद ढांचों को अपना लिया। रोमन समाज में यह पैटर्न क्लाइंट सिस्टम बहुत गहराई तक बसा था। ऊंचे तबके के अमीर लोग, जिन्हें संरक्षक कहा जाता था, वे अपने से नीचे के लोगों की मदद करते थे
और बदले में वे आश्रित उनके प्रति वफादार रहते थे।
एकदम सही। तो जब यह नया संदेश किसी घर के मुखिया या संरक्षक तक पहुंचता था तो वो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता था, वो पूरे घर, रिश्तेदारों और नौकरों तक एक ही झटके में पहुंच जाता था। ये एक तरह का चेन रिएक्शन था।
इससे एक बहुत ही आधुनिक सवाल दिमाग में आता है, क्या हम आज के समाजों में भी अनजाने में ऐसे ही नेटवर्क्स में नहीं बंटे हुए हैं? हम सोचते हैं कि हम बहुत व्यक्तिगत हैं, लेकिन हम सब किसी न किसी टारगेट ग्रुप का हिस्सा होते हैं।
इसे इस तरह से देखिए, डॉक्टर कीनर ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही मार्मिक आधुनिक उदाहरण दिया है, शोक संतप्त लोगों के सपोर्ट ग्रुप्स का, जहां ऐसे माता पिता आते हैं जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया हो।
ये तो बहुत भारी विषय है,
है ना? ऐसे समूहों में लोग एक दूसरे को उपदेश नहीं देते, वे अपनी कमजोरियों और टूटेपन के साथ वहां जाते हैं और उसी जैविक बातचीत में जब वे अपने संघर्ष साझा करते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि कैसे किसी ईश्वरीय कृपा ने उन्हें उस दर्द से गुजरने में मदद की। शुरुआती चर्च बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा था।
यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो हम रोजमर्रा की सामान्य मानवीय बातचीत की बात कर रहे हैं, बाजार में काम करना या अपना दुख साझा करना, लेकिन स्रोत सामग्री हमें अचानक चमत्कारों और पावर इवेंजलिज्म की तरफ भी ले जाती है।
हाँ, और ये पहलू शुरुआती ईसाइयत के प्रसार का एक बहुत बड़ा इंजन था। कीनर समझाते हैं कि ये चमत्कार, जैसे बीमारों का ठीक होना, सिर्फ जादुई तमाशा नहीं थे। ये आने वाली उस पूर्ण दुनिया का एक फोरटेस्ट या छोटा सा नमूना था जहां दुख या बीमारी नहीं होगी।
हाँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चमत्कार मौत का स्थायी इलाज है। हडसन टेलर या एडोनीराम जुडसन जैसे महान प्रचारक भी तो हमेशा जीवित नहीं रहे।
बिल्कुल, मृत्यु तो इस भौतिक दुनिया का एक अटल सच है, लेकिन जब ये चमत्कार होते हैं तो वे अचानक से पूरे समाज का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। कीनर ने अपनी एक बहुत ही व्यक्तिगत कहानी भी साझा की है। मेबल कूपर नाम की एक महिला।
हाँ, वो महामारी के समय वाली कहानी, जब कीनर और मेबल एक अपार्टमेंट में साफ सफाई का काम कर रहे थे। मेबल की घुटने में तेज दर्द था, जिसके लिए कीनर ने प्रार्थना की और दर्द चला गया। लेकिन फिर कहानी डरावनी हो जाती है।
हाँ, क्योंकि कुछ दिन बाद मेबल रोते हुए वापस आई और कहा कि उसे शायद फेफड़ों का कैंसर है, क्योंकि वो खून खांस रही थी।
और यहाँ कीनर ने वो गंदे पानी की बाल्टी वाला रूपक इस्तेमाल किया था ना?
बिल्कुल, पास रखी एक गंदी बाल्टी जिसमें शेलैक जैसी कोई चीज तैर रही थी। कीनर ने उसे दिखाकर कहा कि लगातार धूम्रपान से तुम्हारे फेफड़े भी अंदर से बिल्कुल ऐसे ही दिखते होंगे। ये एक बहुत ही सख्त चेतावनी थी। और फिर उन्होंने प्रार्थना की।
और कमाल की बात देखिए, बाद में मेडिकल रिपोर्ट्स में आया कि वो कैंसर नहीं था। मेबल कूपर उसके बाद कई सालों तक जीवित रही। कीनर इन घटनाओं को सिर्फ चमत्कार नहीं, ईश्वरीय संयोग या सेटअप्स कहते हैं।
जैसे एक्ट्स में फिलिप का उस अफ्रीकी अधिकारी से मिलना, जो पहले से ही अपने रथ में यशाया का 53वां अध्याय पढ़ रहा था, या खुद कीनर का वो वाक्या जहां एक चर्च पिकनिक में एक अनजान लड़की ने आकर सीधे पूछा कि मुझे बताइए कि बचाया कैसे जाए। इन सब में कोई मानवीय योजना नहीं थी।
लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ी शंका जाहिर करूं, जब हम ऐसी शानदार कहानियां सुनते हैं जहां प्रार्थना का एकदम नाटकीय परिणाम निकलता है, तो क्या ये अजीब नहीं लगता जब आप किसी के लिए पूरी शिद्दत से प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं होता? क्या ये निराशाजनक नहीं है?
हाँ, और सच कहूं तो ये हिस्सा सबसे ज्यादा असहज करने वाला है। लेकिन डॉक्टर कीनर इससे भागते नहीं हैं। उन्होंने खुद माना है कि प्रार्थना हमेशा ऐसे जादुई नतीजे नहीं देती। मेबल कूपर की घटना से ठीक पहले उन्होंने एक और बुजुर्ग महिला के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ था।
तो फिर इस पावर या शक्ति का असली मकसद क्या था?
इसका मकसद था गवाही देना, यानी विटनेस। ये शक्ति किसी इंसान के नियंत्रण में नहीं है। जब ये काम करती है तो वो केवल उस संदेश की सच्चाई पर मोहर लगाती है। ये ध्यान खींचने का जरिया है, लेकिन सफर हमेशा वापस उसी बुनियादी नेटवर्क पर लौटता है।
ठीक है, एक तरफ जमीनी बातचीत और दूसरी तरफ ध्यान खींचने वाले चमत्कार। लेकिन जब चमत्कार नहीं हो रहे थे, तब इन शुरुआती नेताओं को रणनीतियां भी तो बनानी पड़ती थी। वे कैसे तय करते थे कि कहां जाना है और कहां नहीं?
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो उनकी भूगोल की समझ अद्भुत थी। लेकिन कई बार पवित्र आत्मा का काम सिर्फ चमत्कार करना नहीं, दिशा निर्देश देना भी था।
और कई बार वो दिशा निर्देश एक साफ ना होता था।
बिल्कुल, जैसे पॉल को एशिया और बिथिनिया जाने से रोक दिया गया। वे वहां जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, और फिर मैसिडोनिया का विजन मिला।
लेकिन मैसिडोनिया जाना कोई सुखद तो था नहीं। वहां फिलिपी और थिस्सलोनिका जैसी जगहों पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें पीटा गया, बंदी बनाया गया। ये कैसी रणनीति है जहां आप जानबूझकर कष्ट सहने जाते हैं?
यही तो असली पहेली है। कठिनाई उनकी रणनीति की विफलता नहीं थी, वो रणनीति का हिस्सा थी। डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि पॉल की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि ने यहां बड़ा रोल निभाया। वो पढ़ा लिखा था, और सबसे बड़ी बात, वो एक रोमन नागरिक था,
जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी।
हाँ, किसी शक्तिशाली देश का कूटनीतिक पासपोर्ट होने जैसा। जब पॉल बंदी बनकर रोम गया तो ये हार नहीं थी। बंदी होने के कारण ही वो सम्राट नीरो के दरबार और शाही रक्षकों तक पहुंच सका, जहां एक आम इंसान कभी नहीं पहुंच सकता था।
वाह, मतलब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ही पहुंच बनाने का जरिया बना लिया। हाँ। और उनके जगहों का चुनाव भी देखिए ना, पिसिडियन, एंटियोक, समुद्र के किनारे और भी तो बड़े शहर थे, लेकिन वही क्यों?
कीनर के अनुसार इसका कारण शायद सर्जियस पॉलस का परिवार हो सकता है। पुरातत्व बताता है कि उस प्रभावशाली परिवार की वहां विशाल संपत्ति थी। वे अंधाधुंध यात्रा नहीं कर रहे थे, वे अपने वीआईपी कनेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे थे, और साथ ही इफिसुस और रोम जैसे शहरों को बेस बनाया,
जो उस समय की पॉप संस्कृति और व्यापार के नर्व सेंटर थे।
रोम दुनिया का दिल था। वहां रोज हजारों लोग आते जाते थे। वहां किसी विचार का बीज बोने का मतलब था कि व्यापारी और यात्री उसे अनजाने में ही पूरे साम्राज्य में फैला देंगे।
ये तो एकदम आज के इंटरनेट के काम करने के तरीके जैसा है। जैसे कोई वायरल मीम किसी हब अमे जैसे रेडिट या एक्स पर अपलोड होता है तो वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। प्राचीन काल में रोम उस समय का मेन सर्वर था।
ये तुलना एकदम सटीक है। और मजे की बात यह है कि इसी इंटरनेट की चर्चा करते हुए कीनर ने एक चेतावनी भी दी है। उन्होंने आज के कुछ नए नास्तिकों और इंटरनेट पर बिना सोचे समझे बहस करने वाले ईसाइयों दोनों की आलोचना की है।
हाँ, जो उन विषयों पर अधिकार पूर्वक बोलते हैं जिनका उन्हें ककहरा भी नहीं पता होता।
बिल्कुल, ये कोई रणनीति नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी का कारण बनता है। शुरुआती ईसाइयों ने सुनिश्चित किया कि उनका संदेश गहराई और ज्ञान के साथ पेश किया जाए।
और ये बात हमें सीधे उनके लॉजिस्टिक्स और संगठन की तरफ ले जाती है। रोम या एफिसस पहुंच तो गए, लेकिन उनके पास एफ्रोडाइट या आर्टेमिस के भव्य मंदिरों जैसी इमारतें थोड़ी थीं।
तो उन्होंने इस कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने घरों में मिलना शुरू किया। घर सस्ते थे, सुरक्षित थे, और सबसे जरूरी बात, वो एक ऐसा अंतरंग माहौल देते थे जहां नए लोगों को गहराई से प्रशिक्षित किया जा सकता था। लीडरशिप तैयार करने के लिए भव्य मंदिर नहीं, लिविंग रूम चाहिए।
और उन्होंने केवल वास्तुकला को नहीं बल्कि उस समय के सांस्कृतिक ढांचों को भी अपना लिया। कीनर बताते हैं कि उनका जो एल्डर्स या निगरानों का कॉन्सेप्ट था, वो रातोंरात नहीं बना था। वो पुरानी इजरायली परंपराओं और कुमरान समुदाय से प्रेरित था।
हाँ, कुमरान समुदाय जो अपने सख्त और अनुशासित नियमों के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उनके संगठन की सबसे बड़ी ताकत थी डेलीगेशन, अमानत यानी अधिकार सौंपना। स्रोत में सामरियों का उदाहरण है, जिनसे ऐतिहासिक रूप से यहूदी गहरी नफरत करते थे।
लेकिन जब सामरियों ने संदेश अपनाया तो उन्हें सिर्फ मिशन का विषय मानकर छोड़ा नहीं गया।
बिल्कुल, पवित्र आत्मा मिलते ही उन्हें इस वैश्विक मिशन में भागीदार बना लिया गया।
लेकिन एक्ट्स 14:23 में हम देखते हैं कि वे किसी शहर में जाते, लोगों को जोड़ते और विरोध के कारण रातोंरात भागना पड़ता। ऐसे में एकदम नए लोगों के हाथों में पूरी लीडरशिप सौंपना बहुत बड़ा जोखिम नहीं था? कुछ हफ्ते पहले जुड़े इंसान को पूरी संस्था का CEO बनाने जैसा
खतरा तो था, और वे इसे जानते थे। लेकिन कीनर बताते हैं कि उनके पास जो सबसे अच्छा विकल्प था, उन्होंने वही चुना। वे हर चीज के परफेक्ट होने का इंतजार नहीं कर सकते थे, और ये भी है कि उनके पास समाज के अलग अलग वर्गों के संसाधन थे। जैसे लूक 8:3 में उन अमीर महिलाओं का जिक्र है जो आर्थिक खर्च उठा रही थी।
और दूसरी तरफ अपोलोस और क्रिस्पस जैसे दिग्गज जो बौद्धिक क्षमता लेकर आए। और सच कहूं तो उस बौद्धिक क्षमता की उन्हें बहुत जरूरत थी, क्योंकि उन पर बहुत भयानक आरोप लग रहे थे। यहीं पर हमें अपोलोजेटिक्स या तर्कपूर्ण बचाव को समझना होगा।
रोमन समाज में शुरुआती ईसाइयों पर नरभक्षण और कौटुंबिक व्यभिचार जैसे झूठे आरोप लग रहे थे,
और ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातों के गलत मतलब निकालने के कारण था। वे प्रभु भोज में शरीर और रक्त ग्रहण करने की बात करते थे, तो लोगों ने उसे सच का नरभक्षण समझ लिया और एक दूसरे को भाई और बहन कहने पर व्यभिचार मान लिया गया।
और यही बौद्धिक संसाधनों की अहमियत सामने आती है। आप पैसे गंभीर आरोपों का सामना सिर्फ चमत्कारों से नहीं कर सकते। सच्चाई को सामने रखने और इन अफवाहों को तार्किक रूप से काटने के लिए दर्शन और साहित्य समझने वाले लोग चाहिए थे।
तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हमने जमीनी नेटवर्क देख लिया, चमत्कार, रणनीति और लॉजिस्टिक्स सब समझ लिया, लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। इस यात्रा की नींव कैसे रखी गई? एक्ट्स के अध्याय 1 की पृष्ठभूमि क्या थी?
ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। शुरुआत ही तय करती है कि अंत कैसा होगा। अगर हम पहले अध्याय को देखें तो डॉक्टर केनर बताते हैं कि ये किताब थियोफिलिस को संबोधित है। ये नाम बहुत कुछ कहता है। वो शायद एक बहुत ही अमीर और उच्च सामाजिक दर्जे का स्पॉन्सर था, यानी शुरुआत से ही उनकी नजर हर तबके पर थी।
और एक और बात जिसने मुझे चौंकाया वो थी पुनरुत्थान के भौतिक प्रमाणों पर दिया गया जोर। ल्यूक लिखता है कि यीशु ने जिंदा होने के बाद उनके साथ खाना खाया। पहले तो मुझे लगा ठीक है, भूख लगी होगी, खा लिया।
लेकिन ये कोई साधारण भोजन नहीं था। उस समय ग्रीक और रोमन दर्शन में भूतों या आत्माओं का धरती पर आना आम कहानी थी, लेकिन यहूदी मान्यताओं के अनुसार फरिश्ते या भूत इंसान का भौतिक खाना नहीं खा सकते। तो मछली और रोटी खाना ये साबित कर रहा था कि वे किसी माया या भ्रम का पीछा नहीं कर रहे थे,
बल्कि एक ठोस सच्चाई के गवाह थे।
और फिर वो दृश्य जहां वे पहली बार इकट्ठा हुए थे, अपर रूम, वहां लगभग 120 लोग थे। कीनर इस बात पर जोर देते हैं कि यरूशलेम के निचले हिस्सों में तो सीवर की दुर्गंध रहती थी, तो इतना बड़ा कमरा शहर के ऊपरी अमीर हिस्से में ही हो सकता था।
बिल्कुल, यानी शुरुआत से ही उनके पास साधन संपन्न लोगों का समर्थन था। और फिर जूदास की जगह लेने के लिए नए व्यक्ति का चुनाव। वे 11 लोगों के साथ काम नहीं चलाना चाहते थे, उन्हें ठीक 12 का ही आंकड़ा चाहिए था, जो इसराइल की 12 जनजातियों का प्रतीक था।
और इसके लिए उन्होंने लॉटरी निकाली। आज हमें ये अजीब लग सकता है कि इतने बड़े फैसले के लिए पर्ची निकाली जा रही है, लेकिन उस समय यूनानी, रोमन और यहूदी तीनों ही संस्कृतियों में ईश्वर की इच्छा जानने का ये एक बहुत ही सम्मानित और आम तरीका था।
तो अगर हम इन बातों को एक साथ रखें, हम 12 का आंकड़ा पूरा करना, खाना खाने पर जोर देना, अमीर घर के अपर रूम में एक साथ प्रार्थना करना, हम ये सब कोई बेतरतीब काम नहीं था।
बिल्कुल नहीं, ये सब एक कंटेनर तैयार करने जैसा था। वे उस पावर या पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे थे, ताकि जब वो ऊर्जा आए तो वे उसे संभाल सकें और पूरी दुनिया के नेटवर्क में प्रवाहित कर सकें।
और इसी बात के साथ हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमने देखा कि शुरुआती ईसाइयों ने सिर्फ चमत्कारों के भरोसे इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपने समाज के हर वर्ग को शामिल किया। अब अमीर महिलाओं से लेकर बुद्धिजीवियों और टेंट बनाने वालों तक, उन्होंने उस समय के हर नेटवर्क और पैटर्न क्लाइंट ढांचे का इतनी चतुराई से इस्तेमाल किया कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी उन्हें रोक नहीं सका।
ये वाकई एक मास्टर क्लास थी। उन्होंने कभी अपनी कमियों का रोना नहीं रोया, जो था उसी का इस्तेमाल किया। मंदिर नहीं थे तो घर इस्तेमाल किए, इंटरनेट नहीं था तो रोमन सड़कों का इस्तेमाल किया, अपनी हर सीमा को रणनीति में बदल दिया।
और यही हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। शुरुआत में हमने बात की थी कि आज एक वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाता है। शुरुआती चर्च ने उस समय की रोमन सड़कों और उन अदृश्य सामाजिक नेटवर्क्स का पूरा फायदा उठाया। तो आज के दौर में सोचने वाली बात यह है एम, आज की इस अति जुड़ी हुई दुनिया में जहां हम सारा दिन स्क्रीन से चिपके रहते हैं, हमारे आसपास ऐसी कौन सी अदृश्य सड़कें या रोजमर्रा के मानवीय नेटवर्क्स हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। शायद किसी नए विचार को फैलाने का सबसे शक्तिशाली रास्ता इंटरनेट के किसी एल्गोरिथम में नहीं, बल्कि हमारे सबसे साधारण मानवीय संपर्कों में ही छिपा है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।